नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ अजय मसंत। अजय, स्वागत है आपका।
नमस्कार नवीन जी।
नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर, क्या कुछ हो रहा है देश विदेश में, खेलों की दुनिया में। भारत की नम्रता बत्रा इतिहास रचते हुए विश्व खेलों में वुशु प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची। भारतीय महिला मुक्केबाज रितिका ने एशियाई अंडर 2022 महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप कल से जालंधर में शुरू, और निहाल सरीन ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में अर्जुन एरेगेसी को पराजित किया। अजय, खेलों की दुनिया में आज का दिन बहुत खास है, और अगर भारत की खासकर बात करें तो एक ऐसा खेल जिसमें हम बहुत कम अपने आप को आगे लेकर जा पाते,
बहुत कम उपलब्धियां मिलती हैं, लेकिन नम्रता बत्रा ने आज जो है एक मेडल जीता है और गोल्ड जीता वो भी, और बहुत ही काबिले तारीफ है, क्योंकि वुशु एक ऐसा स्पोर्ट है जो ज्यादातर एशियन गेम्स में खेला जाता है और बहुत ही कम इवेंट्स टूर्नामेंट्स इसके भी होते हैं, लेकिन इन्होंने जो है, जैसे पिछली बार भी इन्होंने मॉस्को वुशु स्टार्स में भी 2025 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इसी साल, उसके बाद इनका जो है यहाँ पे इतना अच्छा प्रदर्शन आया, तो डेफिनेटली अभी जैसे 2026 में एशियन गेम्स होने वाले हैं जापान में, तो क्योंकि वुशु जो है एशियन गेम्स का एक अभिन्न एक पार्ट है, वहाँ पे वुशु के टूर्नामेंट्स इवेंट्स होते हैं और इंडिया भी अपनी टीम भेजती है ज़्यादातर, तो डेफिनेटली एक बूस्ट मिलेगा और एशियन गेम्स में भी इससे जो है एक होप जागी है कि शायद वहां पे भी मेडल आ पाए।
भारतीय उम्मीदें बढ़ गई हैं खासकर इस प्रतियोगिता को लेके, खासकर इस खेल को लेके, जहां पे हमारा दबदबा बहुत कम है, और अगर विश्व खेलों की बात की जाए तो यहां तक पहुंचना, फाइनल तक पहुंचना अपने आप में इतिहास है।
जी हाँ, बिल्कुल, जैसे अभी ऋषभ यादव ने भी आर्चरी में ब्रोंज मेडल जीता था कुछ ही समय पहले, कुछ ही दिन पहले, तो वो भी एक उपलब्धि थी, क्योंकि वर्ल्ड गेम्स जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं, और दूसरी बात क्योंकि ये जो है मेरे ख्याल से इनकी 12th जो है इसका एडिशन हो रहा है, और इससे पहले भी अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन इस बार जो वुशु का जो गोल्ड आया इससे काफी एक उम्मीदें बढ़ गई हैं कि डेफिनेटली आगे चल के इस स्पोर्ट को जो है इंडिया में भी जो है प्रोत्साहन दिया जाए और ज्यादा।
कल स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में नम्रता का मुकाबला पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की मेंग युचेन से होगा। बत्रा ने इन खेलों से पहले पिछले महीने मॉस्को स्टार इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। वुशु के रिंग से हटकर अब आपको सीधा लिए चलते हैं मुक्केबाजी की ओर। रितिका ने बैंकॉक में एशियाई अंडर 22 महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। रितिका ने 80 किलोग्राम से ज्यादा के वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया, और इसके साथ ही पदक तालिका में भारत ने अपना अभियान चौथे स्थान पर समाप्त किया। सुनते हैं कौशिक को।
एशियन अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने अभियान का शानदार समापन किया, जहां टीम ने दोनों आयु वर्गों में कुल 27 मेडल जीते। 10 दिनों तक चले इस संयुक्त टूर्नामेंट में महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ युवा मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया। भारत अंडर 19 रैंकिंग में दूसरे और अंडर 22 में चौथे स्थान पर रहा। अंडर 19 टीम ने 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रोंज सहित कुल 14 मेडल जीते। अंडर 22 टीम ने 4 रजत पदक जीतते हुए कुल 13 मेडल के साथ अपने अभियान का समापन किया। भारत ने 40 मुक्केबाजों का एक मजबूत दल उतारा था। आज का एकमात्र स्वर्ण पदक रितिका ने महिलाओं के 80 किलोग्राम से ज्यादा के वर्ग के फाइनल में जीता। उन्होंने कजाकिस्तान की असेल टोकतासिन को शिकस्त दी। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन।
अजय, मुक्केबाजी में भारत लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज भेजता है, और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ हम हमेशा प्रतियोगिताओं में स्वर्ण और रजत के साथ लौटते हैं।
देखिए, बॉक्सिंग हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जरूर रहा है, चाहे वो आप लगा लीजिए अमित पंगल हो, गोल्ड मेडल लेके आए थे एशियन गेम्स से, चाहे लवलीना बोरगोहेन हो या चाहे मैरी कॉम हो, 6-time वर्ल्ड चैंपियन हो, तो डेफिनेटली, लेकिन जो हमारे जो इंडिया के जो मेडल आते हैं वो यूजुअली लोअर वेट कैटेगरीज में आते हैं ज्यादातर देखे जाए तो, लेकिन एक उम्मीद जागी है कि जिस हिसाब से रितिका का आज गोल्ड मेडल आया है 80 प्लस के जी, इसमें तो हैवी वेट कैटेगरी हो गई विमेन में, तो डेफिनेटली इससे एक उम्मीद जागी है कि इंडिया जो है और अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा आगे चल, क्योंकि ये अंडर 22 और अंडर 19 जो है ये एक फॉर्मेटिव टाइप के टूर्नामेंट्स हैं जहां से बच्चे निकल के और सीनियर लेवल पे जाते हैं, और क्योंकि कॉम्पिटिशन यहाँ पे बहुत ही अच्छा था, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, यहाँ के बॉक्सर्स जो हैं बहुत ही अच्छे माने जाते हैं जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तो उनमें उनको हरा के इतने सारे मेडल जीतना, चाहे वो अंडर 19 कैटेगरी में हो या अंडर 22 में हो, बॉयज मेंस एंड विमेंस दोनों कैटेगरीज में, तो एक बहुत ही काबिले तारीफ चीज है, और डेफिनेटली यहां से उभर के जो जितने भी बच्चे आएंगे वो जो है ये हमारी क्रीम है जूनियर लेवल पे जो आगे चल के सीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी।
अजय, यहाँ एक सवाल जहन में उठता है वो ये कि जब सीनियर जूनियर से सीनियर वर्ग के अंदर हमारे खिलाड़ी जाते हैं तब कहीं ना कहीं उन पर एक प्रेशर सा होता है और उसको वो कन्वर्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम।
देखिए ऐसा है कि हम अगर ये लगा के चले जैसे शिवा थापा को भी अगर आप देखिए, वो भी एक बहुत ही टैलेंटेड बॉक्सर उभर के आ रहा था लेकिन वो अपने टैलेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाए, ऐसे बहुत सारे बॉक्सर्स इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्ट से, वो जूनियर लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और सीनियर लेवल पे नहीं कर पाते, लेकिन अब देखिए काफी सारी चीजें बदल गई हैं, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स आ गया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आ गया है, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं जहां से बॉक्सर्स को डोमेस्टिक लेवल पे नेशनल चैंपियनशिप्स के अलावा भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स में कम्पीट करने का एक अवसर मिल रहा है, जिसके चलते जो है अब वो चीज नहीं, अब कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो गया इंडिया में, और क्योंकि सरकार जो इतना ज्यादा इंटरनेशनल जो है इवेंट्स पे और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन पे जो है प्रमोट कर रही है टीम जाए, जैसे आप ये देखिए नवीन जी 40 बच्चे गए थे, 20 विमेन में गए थे, 20 मेन मेल बॉक्सर्स गए थे, देखिए 40-40 बच्चों की टीम, शूटिंग में देखिए तो अभी 100-125 शूटर्स की टीम जाती, तो कोई अब पाबंदी नहीं है फंड्स के ऊपर, जब पाबंदी नहीं है फंड्स के ऊपर, फंड्स बिल्कुल सरकार खुली दे रही है कि ये लोग परफॉर्म करें जाके, जिसके चलते जो है इतना अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है जो पहले नहीं होता था।
जिस तरह की अगर बात करें कि पहले क्या होता था कि बहुत सीमित दायरे के अंदर खेल थे, लिमिटेड, लेकिन अब एथलीट्स जाते जा रहे हैं,
अब इससे जाते ज्यादा जाते जाते जितने ज्यादा एथलीट्स स्पोर्ट्स पर्सन बाहर जाएंगे उससे एक दायरा बढ़ जाता है कि चलिए यहाँ पे 60 गए, यहाँ 70 गए, 80 गए, यहाँ से जो है जो क्रीम निकल के आती है ना, अगर कहीं अगर 10 एथलीट को भेजेंगे या 20 एथलीट को भेजेंगे वहां से क्रीम बहुत कम निकल के आएगी, जब 80-90 भेजेंगे तो हमारा टैलेंट का दायरा भी बहुत बढ़ जाता है, जिसको आगे चल के ग्रूम किया जाए। नवीन जी,
और अब मुक्केबाजी के रिंग से अब आपको लिए चलते हैं हम सीधा शतरंज की बिसात पर। निहाल सरीन चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 में अपनी पहली जीत उन्होंने दर्ज कर ली है, और ये जीत उन्होंने दर्ज करी है एक बहुत बड़े उलटफेर के साथ। उन्होंने चौथे राउंड में भारत के ही अर्जुन एरिगेसी को पराजित किया और उनके अजय अभियान को रोक दिया। वहीं जर्मन ग्रैंड मास्टर विंसेंट खेमर ने डच स्टार अनीश गिरी से ड्रॉ खेलते हुए 4 मैचों की अजय लय बरकरार रखी है। और ब्यौरे के साथ हैं दिव्या।
चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 का ये तीसरा संस्करण है जिसे भारत का सबसे मजबूत क्लासिकल शतरंज टूर्नामेंट माना जाता है। इस टूर्नामेंट में मास्टर्स और चैलेंजर्स नाम से 2-10 खिलाड़ियों के राउंड रॉबिन वर्ग शामिल हैं, जिसे 9 राउंड में 10 दिनों तक खेला जाएगा। निहाल और अर्जुन एरिगेसी के बीच मुकाबला रोमांचक रहा, धीमी गति से खेल शुरू हुआ और 15वीं चाल पर अर्जुन ने पहला मोहरा अपने नाम किया। वहीं निहाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 70वीं चाल पर जीत दर्ज कर 2025 के संस्करण में अपनी पहली सफलता हासिल की। इसी बीच मुरली कार्तिकेयन ने भी प्रभावित किया, वो जॉर्डन वैन फॉरेस्ट को हराकर अंक तालिका में ऊपर पहुंच गए। मास्टर्स के अन्य मुकाबलों में वेदित गुजराती और प्रणव वी का मैच बराबरी पर छूटा, दोनों ने अंक साझा किए। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन।
अजय, शतरंज के बिसात पर भारतीय खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, महिला वर्ग हो, पुरुष वर्ग हो, या फिर अगर जूनियर्स की बात करें तो वो भी बहुत तेजी से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, भारत के तो अब कह रहे हैं कि रशिया और यूएसएसआर, जो पहले अस्वाइल यूएसएसआर था, वो अब हब नहीं रह गया है, एपिसेंटर नहीं रह गया शतरंज का, अब इंडिया है शतरंज का एपिसेंटर। और निहाल सरीन ने जो है आज जो है जीत दर्ज करी, डेफिनेटली काफी ये चौथे राउंड में है, इनके पहले पॉइंट्स है, एक पॉइंट पे अभी आए हैं, लेकिन जीत तो दर्ज करी है कम से कम, क्योंकि ये एक ऐसे खिलाड़ी हु इज देयर एट द टॉप बट नॉट क्वाइट देयर, मैं यही कहूंगा। ये इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, ये सबको मतलब मैग्नस कार्लसन से लेके गुकेश से लेके अर्जुन एरिगेसी सबको परेशान
फाइट की,
टफ फाइट देते हैं, लेकिन कभी मतलब उनको हराने जीत में जीत इनको इतनी ज्यादा इनको सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन आज इन्होंने इंडिया नंबर वर्ल्ड नंबर 5 अर्जुन एरिगेसी को हराया है, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एक इनको प्लेटफॉर्म मिला है। अभी 4 ही राउंड हुए हैं, 9 राउंड का टूर्नामेंट, तो बहुत सारे उलट फेर हो जाते हैं, अगर अगले 5 राउंड में जीत जाते हैं सारे एक के बाद एक सक्सेसिव विक्ट्री होती है तो इनके 6 पॉइंट भी हो सकते हैं, तो डेफिनेटली एवरीबॉडी इज स्टिल इन कंटेंशन।
अच्छा, 2 खिलाड़ी खेलेंगे तो एक की जीत और एक की हार संभव ही है, लेकिन अगर मुकाबला इस तरह का मुकाबला होगा तो इसमें कहीं ना कहीं खेल की जीत होती है, स्पोर्ट्स की जीत होती है, खिलाड़ियों की जीत होती है।
जी हाँ बिल्कुल, अगर आप यही लगा के चलें कि अगर कॉम्पिटिशन नहीं होता इंडिया में, चेस का कंपटीशन, अगर कंपटीशन, अगर चेन्नई में इतने सारे कंपटीशंस नहीं होते, इंडिया में इतने सारे कंपटीशन ना होते, तो प्लेयर्स कहां से उभर के आते, तो वही एक चीज वहां पे घूम फिर के आ जाती है कि जितना ज्यादा कंपटीशन मिलेगा एथलीट को उतने ही ज्यादा प्लेयर्स उभर के बाहर आएंगे।
शतरंज के बाद बात हॉकी की, 15वां हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप कल से शुरू हो रही है। 23 अगस्त तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में नया डिवीजन आधारित फॉर्मेट अपनाया गया है और इस फॉर्मेट को इस साल जूनियर, सीनियर, सब जूनियर, महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप से पहले ही लागू किया जा चुका है। सुनते हैं आनंद की ये रिपोर्ट।
टूर्नामेंट में इस बार 30 टीमें हिस्सा लेंगी जिन्हें डिवीजन ए, बी और सी में बांटा गया है। प्रतियोगिता में प्रमोशन और रेलिगेशन का नियम लागू होगा जिससे मुकाबले और रोमांचक बनेंगे। डिवीजन ए में देश की 12 सर्वश्रेष्ठ जूनियर पुरुष टीमें खेलेंगी जिनमें मौजूदा चैंपियन हॉकी पंजाब, रनर अप हॉकी उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर रही हॉकी हरियाणा शामिल है। निचले स्थान पर रहने वाली 2 टीमें अगले साल डिवीजन बी में खेलेंगी। पूल ए में पंजाब, मध्य प्रदेश और यूनिट ऑफ तमिलनाडु की टीमें हिस्सा लेंगी। वहीं पूल बी में उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र शामिल है, जबकि पूल सी में हरियाणा, मणिपुर, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और पूल डी में कर्नाटक हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश की टीमें खेलेंगी। डिवीजन बी में लीग फॉर्मेट होगा, शीर्ष 2 टीमें डिवीजन ए में प्रमोट होंगी जबकि निचली 2 टीमें डिवीजन सी में रेलीगेट होंगी। टूर्नामेंट में अंक प्रणाली, तीनों डिवीजन में जीत पर 3 अंक, ड्रॉ पर 1 अंक और हार पर 0 अंक मिलेंगे। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
अजय, हॉकी में नए नए बदलाव जो हैं, हॉकी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है और मुझे लगता है कि इसमें हमें सफलता हासिल हो रही है।
देखिए प्रमोट की क्या, मैं तो ये कहूंगा कि ये ग्लोबल फिनोमिना है रेलीगेशन और प्रमोशन का, चाहे आप इंग्लिश प्रीमियर लीग ले लीजिए या जर्मन फुटबॉल लीग ले लीजिए या लीग वन ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो या सेरिया ले लीजिए इटली की, तो और इंडिया में भी ISL और आई लीग में प्रमोशन और रेलीगेशन होता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी है, 2 टीमें जो है डिवीजन ए की अगर जो सबसे लास्ट में फिनिश करती है उनको रेलीगेट कर दिया जाएगा और जो जिनको जो डिवीजन बी और सी की जो टीमें हैं जिनको इतना मौका नहीं मिलता वो प्रमोट होकर आगे आएंगी, तो उनका भी उत्साह बढ़ेगा एक तरह से।
लेकिन अजय सबसे अच्छी बात यह है कि तमाम तरह की टीमें इसमें हिस्सा लेंगी, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को खेलने का और जलवा दिखाने का मौका मिलेगा।
जी हां बिल्कुल, बहुत सारे मतलब 30 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस और साथ में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कंपीट कर रही है, तो डेफिनेटली लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत ही अच्छा रहेगा।
और अब बात विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। भारत 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। तैयारियां लगभग अपने चरम पर हैं, ट्रैक बिछ चुके हैं, लेकिन सबसे बात खास बात यह है कि जो मोंडो ट्रैक बिछाने का काम है वो सितंबर तक पूरा हो जाएगा। मोंडो ट्रैक क्या होता है अजय?
देखिए एक मोंडो ट्रैक एक प्री फैब्रिकेटेड टाइप का रबर सरफेस होती है विच प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी, एनर्जी रिटर्न एंड ट्रैक्शन फॉर द एथलीट्स। मतलब एथलीट को अगर हम सिंपल भाषा में बोलना चाहें तो अच्छी उछाल मिलेगी और ग्रिप मिलेगी। नीरज चोपड़ा जो हमारे 2-टाइम मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट, उन्होंने इसको काफी तारीफ करी है और उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये पूरी दुनिया में जो है ओलंपिक्स और हर जगह खेला जाता है तो डेफिनेटली यहां इंडिया में क्यों नहीं है, उसके चलते खेल मंत्रालय ने इसको जो है इसको ओके किया है और उस पे ये टूर्नामेंट होगा वर्ल्ड पैरा।
चलते चलते आपको फुटबॉल की भी खबर दे दें, आज इंडियन आर्मी ने टीम लद्दाख एफसी को 4-2 से हरा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी टूर्नामेंट में वो आगे बढ़ने से नाकाम रही है। वक्त बिल्कुल इजाजत हमें नहीं दे रहा है, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संक में बस इतना ही। अजय हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अनिल नवीन को दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।
नमस्कार।